कृष्ण।
आप तो उन्होंने बलि महाराज का ना सुने होंगे ना, बलि महाराज वामन देव, बलि महाराज दैत्य राज थे और उन्होंने इतना पराक्रम किया कि देवताओं का साम्राज्य छीन लिया और तीनों लोग के स्वामी बन गए, लेकिन जबरदस्ती बन गए, मतलब प्रेम से नहीं दिया उन्हें, छीन लिया उनसे युद्ध में जीत कर उनको अपने जगह से विस्थापित कर दिया। फिर उन्होंने अपने गुरु से एक और सलाह किया कि देवता लोगों को हमने जबरदस्ती परास्त किया है, तो देवता लोग दिल से मुझे इंद्र मानना चाहिए और मैं इंद्र बनना चाहता हूँ। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, इंद्र पद है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से इंद्र का पद है। तो उन्होंने कहा कि आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे, तो बड़ी बड़ी बातें हैं, कई साल लगते हैं कि पूरा 100 करने पड़ेंगे, तो उन्होंने 99 पूरे कर दिए और 100 बार शुरू करने वाले थे, मतलब वो भी पूरा होने वाला है। तो देवता लोग भाग के विष्णु के पास थे, अभी 100 अगर पूरा किया ना हमको सलाम करना पड़ेगा इंद्र के रूप में, दिन से इंद्र पद पर वो इलेक्ट हो जाएगा। तो भगवान ने फिर वामन का अवतार लिया है ना, और वामन का अवतार लेकर यज्ञ में क्या होता है, दक्षिणा दिए बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है, ब्राह्मण को संतुष्ट किए बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो ये ब्राह्मण बनकर गए, भिक्षुक बनकर गए और बलि महाराज बड़े खुश हो गए, कहा कि इतने तेज वाले ब्राह्मण खड़े हो गए, वैसे यज्ञ करते करते खड़े हो गए, इतना तेज चेहरे पे, छोटा सी उम्र, सुनहरे बाल, मुर्गा जैसा पहना हुआ है, समंदर छतरी, ऐसा सुंदर लुभावना रूप था, इतना तेज था, वो तेज देखकर ही प्रभावित हो गए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो क्या चाहिए आपको। तो ये 3 पग भूमि थी, तो कहते हैं कि 3 पग भूमि आपने नन्हे नन्हे पैसे लेंगे तो क्या है, मेरे पास 3 लोगों का साम्राज्य है, आप अगर भिक्षा में 1 लोग भी मांग लेते ना तो मैं आपको दे देता। आप लगते बड़े बुद्धिमान हो लेकिन वास्तव में उतनी बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि आपको जहाँ आप जानते नहीं हो आप किससे क्या किससे मांगने जा रहे हो। तो कहते नहीं, देखो मुझे यज्ञ करने के लिए जितनी भूमि चाहिए ना उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि अगर जितना जरूरत है उसमें आप संतुष्ट नहीं हो तो तीनों लोगों को राज्य मिलने पर आप असंतुष्ट रहेंगे, और उसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ आप खुद हो, आपका 3 लोग का राज्य है तो क्या संतुष्ट नहीं, आपको इंद्र बनना है उसके आगे जाकर, तो मुझे जितना है उतना काफी। अब आगे सुन लीजिए, अभी संकल्प किया ना, संकल्प करके दान का संकल्प कर दिया, अभी ले लो भगत जमीन ले लो, हाँ ठीक है। तो आंखों के सामने इतने विशाल हो गए, त्रिविक्रम बन गए, पट्टू वामन थे वो त्रिविक्रम बन गए। अब बोलते हैं ले लो भूमि ले ली, समझ गए कि 1 पग में 2 पग में तो पूरा ही नाप लिया, नीचे के लोग सारे 6 पाताल मतलब नीचे वाले अतल वितल सुतल तलातल रसातल जितने भी लोग हैं सब नाप लिए, और पृथ्वी और स्वर्ग लोग दूसरे पैसे नाप लिए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी छेद कर दिया, इतना विस्तार किया उन्होंने। अभी 2 पग में तुम्हारे पास जितना था वो सब ले लिया, तीसरा पग बाकी ना अभी कहाँ रखूँ, तो समझ गए कि अभी क्या करूँ। तो कहते मेरे अहम पे पैर रखो, भगवान ने सब पे पैर रखा, और फिर बहुत लंबी कहानी है वो भागवत की, लेकिन तांत्रिक दृष्टि से ये पॉइंट आप ध्यान सुनिए, तांत्रिक दृष्टि से 100वां यज्ञ असफल हो गया, क्योंकि 3रा पैर का भूमि ने दिया ना उन्होंने, मतलब ब्राह्मण को जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया संकल्प, तो 100वां यज्ञ अधूरा हो गया। लेकिन भगवान ने बलि पर इतना कृपा किया, इतना कृपा किया, इतना कृपा किया कि उसको सुतल लोक दे दिया और इतने वरदान दिए, भी क्या कहूँ, समय बहुत कम है, लेकिन भगवान ने कहा कि सुतल लोक इंद्र से भी अधिक पावरफुल होगा, तो इंद्र ही पहले जलस होकर आएगा, जलकर तो इंद्र से बचाने के लिए चक्र भेज रहा हूँ उसकी रक्षा करने के लिए। 36,000 साल तुम यहाँ पर रहोगे लेकिन तुम्हारा मन भ्रष्ट नहीं होगा राक्षस कुल के संत की वजह से। आखिर में क्या बोले कि तुम्हारे सुतल लोक में द्वारपाल बनकर मैं आऊंगा, वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड। तो प्रहलाद भी वहां पर आए थे देखने के लिए, क्योंकि उनके वो है ना पोता है ना, प्रहलाद का पोता है वो, ग्रैंडसन है, तो भी आए थे, जैसे भगवान ने बोला ना मैं जाऊंगा उसके द्वारपाल बनकर, तो ये भी चले गए उनके साथ, तो दोनों द्वारपाल बने सुतल में। लेकिन जब सुतल लोक में जाने के लिए निकले ये सब लीला समाप्त करके, तो शुक्राचार्य को क्या बोले भगवान, ये इम्पोर्टेंट बात है। शुक्राचार्य को भगवान ने क्या पूछा, क्या बोला, देखो ये मेरा भक्त है, इसका सौवर्यज्ञ जो है ना वो अपूरा रह गया है, आप पुरोहित हो ना, आपको पूरा करना है, कुछ भी करो आप मंत्र कुछ भी करो, उपाय आपको करना है कि मेरे भक्त को मैंने ये भी वरदान दिया है कि 36,000 साल सुतल लोक में रहने के बाद में तुम इंद्र बनोगे, ये भी वरदान दिया है, इसके लिए किया था। लेकिन वो कहने के लिए टेक्निकल तो बात अधूरी है, यहाँ पर पूरा करना है आपको। तो उस समय शुक्राचार्य ने क्या जवाब दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब शुक्राचार्य कौन है, राक्षस के गुरु है वो, उनका कान बढ़ते रहते हैं। तो वामन भट्टू आए थे ना, तीन पग गुरु मांग रहे थे, इतने के इतने इतने पैर उनके क्या है, तीन पैर पे क्या होते हैं, कान में बोल रहे हैं शुक्राचार्य मत दो मत दो, ये तो विष्णु है, मत दो इसको मत दो, ये सब छीन लेगा तुम्हारा। बोले महाराज क्या बोलते हैं, अगर विष्णु मेरे दरवाजे में भिखारी बनकर आया है तो मुझे तो देना ही है, मुझे मेरा भाग्य है कि विष्णु मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन गया है। तो ये राक्षसों के बार बार कान भरते हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ छीन लगा दक्षिणा कैसे मिलेगी मुझे। तो राक्षस के वो है ना पुरोहित है, वो तो धन के लिए काम करते, सब देख रहे थे कि आएगी विष्णु जी सब कुछ छीन लेंगे, दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, मैं तो ऐसे ही कर्जा दे जाऊंगा। वो राक्षस गुरु क्या बोले वो समझो आप, क्या बोलते हैं, कोई भी कार्य जब अधूरा होता है और उसमें हरिनाम संकीर्तन किया जाता है, जैसे हमने अभी किया गोविंद गोपाल नंद नंद गोपाल, जो भी हमने भगवान का नाम गाया, हरे कृष्ण मंत्र गाया, इसको कहते हैं हरिनाम संकीर्तन, मतलब हरिनाम को एकत्र आकर किया हुआ कीर्तन, संग में किया हुआ कीर्तन, संकीर्तन। जब ये होता है तो कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता है, वो पूर्ण हो जाता है। यज्ञ में कोई त्रुटि है, कोई सामान नहीं आया, घी कम पड़ा, लकड़ी ठीक नहीं थी, मंत्र ठीक नहीं बोल रहा था, जो ठीक 50 चीजें होती है कलयुग यज्ञ में। लेकिन उस यज्ञ में भी जब हरिनाम संकीर्तन होता है शुरू में बीच में अंत में, तो सारी त्रुटियां नष्ट होकर वो यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा ही वहां मंत्र, कोई स्थान अच्छा नहीं हो, बोलने वाला ठीक नहीं हो, विधि ठीक से नहीं करता होगा, मंत्र ठीक से नहीं बोलते होंगे, जितनी भी त्रुटियां हैं ये सब ही हरिनाम संकीर्तन से पूर्ण हो जाती है। अभी आप मृदंग बजा रहे हो है ना, आप असिस्टेंट दे रहे हो, लेकिन असिस्ट किसको कर रहे हो, सहायता किसको कर रहे हो, हरिनाम को कर रहे हो। संकीर्तन का कैप्टन कौन है, हरिनाम है, बोलने वाला भी नहीं है, हरिनाम कैप्टन है उसका। और वो कैप्टन के लिए ये मृदंग बज रहा है, तार बज रही है, और कुछ होगा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वायलिन बज रहे हैं, ये माइक्रोफोन है, ये स्पीकर है, ये सब उसके लिए है। कैप्टन कौन है, हरिनाम। तो कैप्टन पर ध्यान देना चाहिए, मृदंग कितना अच्छा बज रहा है, बाकी म्यूजिक कितनी अच्छी बज रही है, गाने वाला कितना गा रहा है, वाह क्या आवाज है उसकी, आलाप मारते जा रहा है, उसका भी ध्यान हरिनाम पे होना चाहिए, आलाप पे नहीं होना चाहिए। तो कैप्टन कौन है, हरिनाम है। गाने वाले का गायन कैप्टन नहीं है, गायन उसका सहायक है, उसको और मधुर बनाने के लिए और मीठा बनाने के लिए। इसलिए जहां पर भी कीर्तन होता है ना, जैसे आप लोग सभा में अभी आए हैं, मुंबई से आए, इधर से आए, कहां पर भी जब कीर्तन होता है ना, सारे बटन बंद करके और एक ही बटन ऑन करने चाहिए बस। इतने अपने मन में बहुत सारे ट्रैक चलते रहते हैं, इधर काम पे जाना है, उधर नौकरी में जाना है, घर में बच्चा बीमार है, दवाई लानी है, सब्जी लाना है, ये लाना है, घर में आधी बल्ब रिपेयर करना है, खराब हो गया है, ऐसे 50 चीजें मन में चलती रहती है। लेकिन ये 50 चीजों को तुरंत बंद करना चाहिए जब भी हरिनाम संकीर्तन शुरू होता है। हमारे शास्त्र में लिखा है बहुत पक्षी गाते हैं, मोर भी गाता है, तोता भी गाता है, कोयल भी गाती है, चक्रवात भी गाता है, बहुत सारे पक्षियों का वर्णन दिया है, उनकी सभा होती है और सब लोग अपना अपना मधुर गायन करते हैं। लेकिन कहते हैं जब भी भंवरा आता है ना, भंवरा जब भंवरे का गायन होता है तो सारे पक्षी चुप हो जाते हैं, शास्त्र में वर्णन दिया है, जब भंवरा गाता है तो सभी पक्षी अपना गायन बंद कर देते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ गायन है उसका, बाकी उनकी आवाज अच्छी होगी लेकिन भंवरे के गायन को श्रेष्ठ माना गया। उसी प्रकार से गाने वाले बहुत होंगे, रागदारी वाले गाने भी बहुत अच्छे होंगे, वाद्य भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, वायलिन होगा, मुरली होगी, क्या क्या हो सकता है। लेकिन जब हरिना महाराज होता है ना, सबको अपना पीछ लो करना पड़ता है, सहायक के रूप में, प्रधान के रूप में नहीं। हरिनाम कैप्टन है, नायक। और हम सब लोगों को हमारा सारा चित्त की जितनी वृत्तियां हैं 50 जगह भाग रही है, सब वृत्तियों को बंद करके तुरंत ध्यान देना है। 2 मिनट क्यों ना ध्यान देंगे ना, देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी, पुण्याची गणना कौन करे। लोग गिन नहीं सकते उसका पुण्य जो भगवान के दरवाजे में भगवान के नाम में एक क्षण खड़ा है, जिसने एक क्षण अपना चित्त भगवान पे लगाया है, उसके पुण्य की देवता भी नहीं कर सकते। जो गिनती करने वाले हैं ना, लिखते हैं गिनती करके, वो भी इसकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसा लिखा गया। कभी कभी वापस वो भी सोने की कहानी है, लोग बैठे उसके ऊपर, उनको पता नहीं। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसका वैल्यू कम होता है। और आपको कहेंगे ना, शनिवार को पंचमी तिथि में जब शनिवार आएगा तो शनिवार को शाम को 5:15 बजे 5 पत्ते लेकर वट के पेड़ को 11 बार प्रदक्षिणा करना है, ऐसा तो बताया ना, कॉम्प्लिकेटेड। अगले बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया आंसर लगेगा, जो भी इतना स्टेप्स है उसमें गलत नहीं होना चाहिए, वो भी पंचमी का शनिवार आना चाहिए। बहुत सारी चीजें, ठीक है, बोलेंगे आप ये सारे व्रत छोड़ो, भगवान का नाम लो, सब कुछ प्राप्ति होगी। अरे इतना सहज कैसा हो सकता है। और उसमें क्या होता है, जो सस्ती चीज मिलती है ना, उसकी हम ज्यादा कीमत नहीं करते। घर में अगर लक्ष्मी भी होगी ना, तो भी बाहर आदमी देखता है, पर घर की है ना वो, क्या है, ये हमारा स्वभाव है। जो आसानी से प्राप्त है उसका मूल्य नहीं होता है, जो नहीं प्राप्त होता है उसके पीछे आदमी भागते रहते हैं कि वो मूल्यवान है, वो मूल्यवान है। और वो मूल्यवान जब हमारा हो जाता है तो फिर उसका मूल्य घट जाता है, फिर जो बाहर है उसका मूल्य बढ़ता है। उस तरह से ये हरिनाम जो है सर्वश्रेष्ठ है और सबसे आसान भी है, सबसे सिंपल भी है। क्यों सिंपल है? बालक भी कर सकता है, बुड्ढा भी कर सकता है, धनी भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, आदमी भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, पावरफुल आदमी भी कर सकता है, कमजोर आदमी भी कर सकता है, या कश्चित होगा आदमी भी कर सकता है, महान व्यक्ति भी कर सकता है। और सब लोगों पर एक ही परिणाम करेगा, धनी व्यक्ति पर ज्यादा परिणाम नहीं करेगा, गरीब व्यक्ति पर कम परिणाम नहीं करेगा, पढ़े लिखे पर ज्यादा परिणाम नहीं करेगा, अनपढ़ के ऊपर अधिक परिणाम नहीं करेगा, सबके ऊपर जो जो जीव है समान परिणाम करेगा, और जो ध्यान देगा उस पर ज्यादा परिणाम करेगा। जो ध्यान पूर्वक करेगा उसके लिए सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ लाभ देगा वो। तो ये हमको जीवन में लेना है। जन्म सार्थक करो, करो परोपकार, खुद का जीवन में सार्थक करना चाहिए, इसको स्वीकार करके तो दूसरों को देना चाहिए। नहीं तो भारत भूमि में लिया हुआ जन्म जो है वही सार्थक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक पता नहीं हुआ शायद कि भारत भूमि में जन्म लेने के लिए कई जन्म भारत के बाहर देने पड़ते हैं और पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाकर भारत में जन्म मिलता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत संतों ने जन्म लिया है, उनके चरण कमल यहाँ लगे हैं, भगवान के अनंत अवतार यहाँ पर आए हैं और अपने नंगे पैर से यहाँ चले हुए हैं। कौन सा राज्य भारत में बताओ वहाँ संत नहीं है? महाराष्ट्र बोलो, केरला बोलो, कर्नाटक बोलो, उत्तर प्रदेश बोलो, बिहार बोलो, हरियाणा बोलो, पंजाब बोलो, हर जगह संत जन्म लिए हैं। विदेश में संत है क्या भाई? एक आध दो है बस नाम के लिए। लेकिन संतों की खान किधर है? किधर है। और भगवान भी स्वयं आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए, महाराष्ट्र में आए, साउथ इंडिया में, सब जगह आए भगवान। तो ऐसे भूमि में जन्म लेने के लिए बहुत पुण्य लगता है। और हमने यहाँ जन्म लिया है मतलब क्या, हमने वो सारे पुण्य किए हैं इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। लेकिन इसके बाद भी क्या कर रहे हैं? वो जन्म का पुण्य का लाभ जो आपने यहाँ पर जन्म लेके प्राप्त किया है उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मगन खा रहे हैं। तो क्या हो गया? भाग्य तो था आपका लेकिन आपने वो वेस्ट कर दिया। बड़ी तो उपार्जित संपत्ति खूब होती पर बुलानी थी उधड़ी आणि संपूर्ण टाकली आणि तो आता बूट पॉलिश करतोय वसई स्टेशनवर प्लॅटफॉर्म नंबर 4 वर। सो संपत्ति बहुत है पुण्यों की, लेकिन आगे कर्म हमारे उतने शुद्ध नहीं है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग, घटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वैसे हमारा जन्म है बहुत संपत्ति वाला धर्म है जन्म, उसको सिद्ध करना है, आपको सार्थक करना है, परोपकार करना है, तभी आपका भी जीवन धन्य है, आपसे मिलेंगे उनका भी जीवन धन्य है, ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।